पार्वती जी ने सती की और अपने गुरु और पति की बात उन्होंने नहीं मानी, उस पर विश्वास नहीं हुआ, संदेह हो गया, तो कहां देखो जैसे वो चली गई, भक्ति तो खत्म हो गई। पिताजी के यज्ञ में प्राणों की आहुति देनी पड़ी, शंकर जी से लाखों वर्षों के लिए पृथक हो गई, थोड़ा सा संदेह हो गया। उन्होंने कहा राम भगवान है, कथा उनकी बस सब सुनाई, रामायण भर की कथा। और जब रामचंद्र जी के पास में शंकर जी गए, सीता का अपहरण हो गया और रामचंद्र जी बिलक बिलक करके रो रहे हैं, लक्ष्मण जी उनको सांत्वना दे रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। शंकर जी उस लीला को देख करके मुग्ध हो गए, रोमांच हो गया। उन्होंने सोचा जे राम की इस लीला में हमको बाधा नहीं देनी चाहिए, इसलिए रामचंद्र जी हमको न देखें और मैं उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करके यहां से चला जाऊं। वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, किंतु रामचंद्र जी शंकर को देखा कि नहीं देखा, वो तो सर्वंतर जामी ही, वो तो सभी देख रहे हैं, तभी नर लीला में है, इसलिए अनदेखे रह गए, नहीं देखा। जब उन्होंने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, चलने को हुए, तो सती जी ने पूछ दिया आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, तो शिव जी मुस्कुरा दिया, मन की बात जान गए। फिर उन्होंने पूछा बतलाते क्यों नहीं है, किसको आप प्रणाम कर रहे हैं, मैंने अपने आराध्य देव सर्व अंतर्यामी विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले, मैंने उनको प्रणाम किया, उनको प्रणाम, ये वही हैं जो बिलख करके अपनी स्त्री के लिए रो रहे हैं, ऐसे कामी पुरुष, और इनको पता नहीं है जिनकी पत्नी कहाँ है, मैं तो जानती हूं ये लंके में है, और इनको पता नहीं, और ये परब्रह्म है तो अपनी सीता जी को बुला नहीं सकते थे, रावण का ध्वंस कर सकते थे यहीं से, और यदि ऐसे होते तो उनकी सीता को चोरी करके क्यों ले जाते, और उनकी कोई पत्नी होती है ब्रह्म की, बस संदेह हो गया और बस गड़बड़ हो गया। भगवान की कथाओं में, गुरु के बात में, शास्त्रों की बात पर कभी संदेह मत करो, और नहीं तो संदेहात्मा विनश्यति, विनाश उसका, विनाश माने क्या, परमार्थ से च्युति हो जाती है, परमार्थ नहीं रहता। शंकर जी ने देखा जैसे ये तो मामला बहुत बेढब हो गया है, ये साधारण जैसे मैंने मुस्कुरा करके छोड़ दिया वैसे तो नहीं, इसमें गंभीर बात हो गई, सचमुच में इसको संदेह हो गया। उन्होंने कहा, गंभीर होकर के बोला, जैसे यदि हमारी बातों में विश्वास नहीं है तो तू परीक्षा कर ले। वो थोड़ी सी ऐसा कह करके और अनमने हो करके बढ़ गए, और कहीं थोड़ी सी दूर जाकर के एक वट वृक्ष की छाया में थोड़ा सा बैठ करके भगवत स्मरण करने, ओहो भगवान की कैसी अपूर्व लीलाएं, साधारण मनुष्य जैसे बिलख करके रो रहे हैं, साधारण आदमी तो उनको समझ नहीं सकता, ऐसे ही सोच रहे थे, तन्मय हो रहे थे। इतने में पार्वती जी ने, सती देवी ने सोचा जब मैं क्या परीक्षा करूं, बैठो ठीक है, ये बड़ा कामी हो रहा है, इसलिए ठीक सीता जी का वही रूप बनाऊं जिस समय उसका अपहरण हुआ था, बस ठीक वैसा ही रूप बना दिया, और बना करके रामचंद्र जी के सामने उपस्थित हो गई। रामचंद्र जी ने देख करके भी नहीं देखा, वो दूसरी तरफ मुंह घुमा करके पेड़ों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, हिरणों को गले लगाकर पूछ रहे हैं, मेरी प्यारी सीता को देखा, इस तरह से एकदम बावरे बन गए। आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही। लक्ष्मण जी किसी प्रकार से उनको संभाले हैं। फिर जब दूसरी तरफ उन्होंने कहा साथ देखा नहीं, इसलिए घूम करके फिर पीछे उनके सामने से जाकर के खड़ी हुई, फिर भी उन्होंने नहीं देखा, फिर मुड़ गए, चारों तरफ में वो घूम गई, नहीं देखा। अंत में उनके हृदय में कुछ दया आई राम पे, उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके बोले मैया आप यहां पर कैसे? शंकर जी तो आगे चले गए और तुम अकेली इस वन में किस लिए घूम रही? तो वो किस लिए पूछा वो जाने नहीं, ये किस लिए घूम रही वो सभी कुछ जानते हैं, घट घट वासी हैं, समझ गए। तो अरे ये हमको कैसे जान गया जे मैं सीता जी सती हूं, ये तो जान लिए तो मालूम होता है जी हमारी गुरु हमारे शंकर जी की बात, ये परम सत्य है इसलिए हमको ये सत्य, तो ये परम ब्रह्म नहीं है। इतने में झुक करके प्रणाम करना चाहा, बस झुक करके प्रणाम किया, झुक करके मैंने मिट्टी पर झुक करके पंचांगों से प्रणाम किया और उठते ही उनके चेहरे की तरफ में देखा, वो तो जैसे तैसे उनके पास में सीता जी खड़ी हुई हैं बाएं तरफ में, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है, और जिधर नजर पड़ती है उधर ही देखा श्याम किशोर और किशोरी, जिधर जाए पेड़ पत्ते गुल्म लता जिधर में देखा उधर में केवल सीता और राम को देखा, और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में देखा, बल्कि वो वनवास का रूप ही नहीं पहले वाला रूप देख करके आश्चर्यचकित, जिधर नजर पड़े उधर ही देखा, अर्थात उनका मोह एकदम संपूर्ण रूप से भंग कर दिया। अब तो वो एकदम थर थर कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी और ऐसे साष्टांग प्रणाम किया, और जब उठती हैं तो देखती हैं हासिते हासिते सीता जी अब कहीं नहीं, लक्ष्मण जी को उसी रकम विषाद की अवस्था में देखा, और देखा जैसे अब तो राम हार हासिते हासिते। फिर वहीं से मुनि अब चिंता हुई, अब मैं अपने पति को अपने गुरु को मैं क्या कहूंगी, विषाद ग्रस्त हो गई और चिंतन करते करते लगी अपने गुरु के ऊपर में हमको अविश्वास हुआ, उनके बातों पर संदेह हुआ, ये तो ठीक नहीं। जब वहां पर पहुंची तो शंकर जी ने पूछा, कुछ परीक्षा की, चित्त स्थिर हुआ, ये नाथ या गोसाई मैं क्या उनकी परीक्षा कर। फिर एक तो संदेह और दूसरी बात गुरु जैसे अपने हृदय की बात को छिपाना, ये महापराध हो गया, कुछ करो हो जाए चित्त की दुर्बलता से, किंतु गुरु को अपनी बात को मत छिपाओ। यदि तुमको भगंदर हुआ है और अपनी मैया से और बाप से छिपाएगा तो वो भगंदर क्या होगा, मर जाएगा ना, मर जाएगा, तू मत छिपाओ। एक किशोरी लड़की को कहीं चूतड़ में घाव हो गया, अपनी मैया को दिखाएगी नहीं तो कब तक नहीं दिखाएगी, मत छिपाओ, ये भयंकर रोग हो जाएगा, फिर परमात्मा से च्युत कर देगा। गुरु जी को मत समझो जैसे वो नहीं जानते हैं, यदि ये जानते हो कि वो भगवान के प्रकाश हैं या साक्षात हरि ही हैं, गुरु जी भगवान के प्रकाश हैं, भगवान के समान ही हैं, पूजनीय हैं, जिस प्रकार से भगवान हमारे पूज्य हैं गुरु जी भी वैसे ही हैं, जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, और उनको तुम छिपाता है कोई बात मत छिपाओ, नहीं तो तेरे लिए नासूर बन जाएगा और तू कुछ दिनों में ही परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी गोसाई मैं क्या परीक्षा ली थी, कुछ परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने अच्छा एक से ये दो हो गया, कुछ नहीं बोले, यदि और कुछ पूछूं तो और इसको ढकने के लिए और तीसरी बात करेगी। मन ही मन संकल्प किया ये इसने सीता जी का रूप देखा लिया है, सीता देवी हमारी आराध्य है, इसलिए इस रूप में इस शरीर से अब मेरी आराध्या सीता जी के समान ये हो गई, ये मेरी मैया हो गई, कभी भी अपनी अर्धांगनी और शिष्य के रूप में इसको ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक ये मेरा जीवन रहेगा और इसका जीवन रहेगा तब तक इसके इस शरीर से हमारा दूसरा कोई भी नाता नहीं रह करके आराध्या देवी मैया के रूप में हमारा नाता रहे। और इतने में आकाश से फूल की वृष्टि भी, आपके समान ऐसी कोई दृढ़ प्रतिज्ञा संसार में करने वाला नहीं है, धन्य है आप, धन्य है। ये तो एकदम डर गई, आपने क्या प्रतिज्ञा की, मौन हो गए, कुछ नहीं कहा, एकदम बात नहीं की। अब उनको अंदर में भीषण कष्ट हुआ। आश्रम में आए, दाहिनी तरफ में आसन दिए, सामने की तरफ में गुरु जी को सामने से प्रणाम करो, ठाकुर जी को बाएं रख करके प्रणाम करो, ये सब विधियां हैं। स्त्रियों के लिए साष्टांग प्रणाम की विधि नहीं है, ठाकुर जी हो वहां अकेले में हो वो दूसरी बात, लोगों के सामने स्त्रियां साष्टांग प्रणाम ना करें, और गुरु जी को सामने से प्रणाम करो, ठाकुर जी को बाएं रख करके वो हमको दर्शन करें। किंतु गुरु जी तो साक्षात ये भगवत स्वरूप हैं, इसलिए सामने ही जब हैं तो उनको सामने से प्रणाम करो, गुरु के पास में रहो, चुपचाप मत बैठो, कुछ न कुछ पूछो और कुछ कुछ सुनो, कुछ प्रश्नोत्तर हो, प्रश्नोत्तर माने श्रद्धा के साथ, और उनकी बात का कभी उल्लंघन मत करो, साथ साथ में उनके वचनों में कभी भी अविश्वास मत रखो। ये नहीं जानते हैं, इनको भी धोखा दिया जा सकता है, इनको भी बहकाया जा सकता है, ये मत समझो, उन पर पूर्ण विश्वास रखो, यही श्रद्धा ही, ये विश्वास करना ही श्रद्धा है। फिर उनको उस रूप में नहीं लिया, बाध्य होकर के अपने को पिता के यज्ञ में जला दिया। जब इस शरीर से मुझे मतलब किया, जब शंकर जी ग्रहण नहीं करेंगे, और इसके बाद पार्वती के रूप में हिमालय के पास वहां पर जन्म लिया, और फड़ी बड़ी मुश्किल से विष्णु के और ब्रह्मा के बार बार निवेदन करने पर तब उनको फिर से ग्रहण किया, किंतु उस शरीर में नहीं। इन शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए, भागवत का श्रवण यह है, भागवत हम श्रवण करते हैं और भागवत की बातों को नहीं मानते हैं तो भागवत सुनना बेकार का हो जाता है। लिखा है भागवत में, एते चान सकला विष्णु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये लिखा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते च अंश कला, भगवान के जितने भी लीला अवतार इत्यादि अवतार हैं, गुणावतार हैं, सब अवतार हैं, राम उसमें है, नृसिंह जी हैं, कल्कि हैं, वामन हैं, और सब अवतार हैं, ये सब कोई उनके अंश हैं, कोई अंश के अंश के अंश के कला और कोई विकला है, इसलिए कृष्ण ही स्वयं भगवान है। हजार बार भागवत सुनते हैं किंतु मानते नहीं है तो क्या भागवत सुनना हुआ, जो सुन लिया वो पत्थर के लकीर की भांति हृदय में सदा के लिए जीवन भर के लिए धारण कर लिया। ये भागवत का सुनना, बेटा अथवा बेटी एक ग्लास पानी ले आना, तो सुना, हाँ सुनी, बेटी जरा एक ग्लास पानी ले आना, सुना, सुना, बेटी जरा पानी ले आना, सुन नहीं रही, आप बकबक क्या कर रहे हैं, आपने चार बार कहा मैंने तो सुन लिया, आपने तो सुनने के लिए कहा था, मैंने तो सुन लिया, तो ये सुनना हुआ, ये सुनना नहीं हुआ, सुनना हुआ कब हुआ, जाकर के ग्लास को माजा, सुंदर सुशीतल मीठा जल ले आए। अच्छा, ये तो हुआ सेवक, तीसरे कोटि का कनिष्ठ। आज जो ये देखे जो गुरुजी का मुख सुख रहा है, बस झट बिना कहे बिना आदेश के समझ करके हृदय से इनकी पानी की आवश्यकता है, बस बिना मांगे ही लेकर उनके सामने में। ये कौन? उत्तम कोटि का सेवक, जो कहने पर ला दिया वो मध्यम, और जो कहने पर पानी लिया। गुरु जी कहां पानी है, पानी कहां पर है, कैसा पानी चाहिए उसमें? आज यदि पानी वहां न मिले तो ये कौन है? उसमें से को पोंछ दो, सेवक में से तो रह क्या गया? बक। माने देखने में यह हंस के समान है किंतु हंस नहीं, ये बक है। इसलिए ये सब चीजों को समझ करके भागवत के अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। और जिन्होंने सारी भागवत 10 बार, कितना भागवत सुना, तो मेरा 12 बार हो गया है, बड़े प्रसन्न हो करके। आपके पूजा किन 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 की करती हैं आप? गणेश जी की? मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ, शंकर जी की, हनुमान जी की, संतोषी मैया की, सबकी पूजा करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, आपने भागवत पूरा सुन लिया, 14 कांड भागवत का आपने सुन लिया है, 14 कांड ये भागवत का सब पूरा आपका हो गया। ऐसा नहीं, इस तरह से इनमें शिक्षाएं भरी पड़ी हैं, उन शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। ये यदि एक श्लोक, कितने 18,000 श्लोकों में से एक श्लोक यदि किसी को याद हो और उसका आचरण करता है, नहीं है आधा श्लोक छोड़ दो, केवल एक चरण भी पाठ करता है और भी अर्थ के सहित और उसको ग्रहण करता है, तो उसका भागवत सुनना हो जाएगा। एक श्रीमद् भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसे भूत भविष्य और वर्तमान काल की सार्वजनिक, सर्वसामयिक और सार्वजनिक समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। आज हम भागवत से बहुत दूर हो गए हैं, इसलिए देश विदेश में सब प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। आज भागवत की कथा सुने, कोई चोरी न करे, यहां पर भी चोरियां हो रही हैं। हम लोग कथा में यहां पर बैठे हैं और कोई ये ताक में होगा कि ये लोग नीचे चले जाएं, तो उनके जूते, उनके पैसे हम निकाल लें। यदि बाई चांस ऊपर में, अभी सब लोग नीचे हैं, यदि कपाट खुला रहा तो इसी फिराक में होंगे कि हम ले लें। यदि भागवत की कथाएं सुना और हृदय से सुन लिया, ये सब समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। ना जेल की जरूरत होगी, ना अदालत की जरूरत होगी, ना वकीलों की जरूरत होगी, न किसी की जरूरत, सब अपने आप समस्याएं हो जाएगी। किंतु लोग भागवती कथाओं को नहीं सुनते, सुनते हैं तो अर्थ धर्म काम के लिए सुनते हैं, भक्ति के लिए नहीं सुनते। इसलिए श्रीमद् भागवत ही विश्व में एक ऐसी समस्त चीजों का समाधान है। हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, लोगों के प्रति प्रीति रहेगी, सबको अपना मानेगा या अपना मानेगी और कोई भी समस्या न रह जाए। ये सब समस्याएं भागवत के नहीं सुनने से, प्रेम के अभाव में ये सब चीजें हो रही हैं। अभी एक कथा आएगी, महाराज अंग ध्रुव के वंश में हुए, ध्रुव का की कथा आप लोगों ने सुना, उसमें भी बहुत सी कथाएं हैं। समय मैं इधर में ले लूंगा, उधर में कम हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में मैं बतला रहा। ध्रुव की कथा समाप्त। ये समझना चाहिए ध्रुव में और प्रह्लाद में क्या अंतर है, वैशिष्ट है ना? लोग समझ नहीं पाते, कहते हैं कि ध्रुव उत्तम है और प्रह्लाद महाराज जी, समझ में उनके नहीं आता, क्योंकि भागवत नहीं सुनते, वैष्णव के मुख से नहीं सुनते। सुनते तो बहुत है, जब तक वैष्णवों के मुख से ये सब चीजें नहीं सुनी जाएगी, समझ में नहीं आएगा। भगवान की ही आराधना करते हैं, निराहार रहते हैं ध्रुव की भांति, छह महीने में भगवान का उनको दर्शन हो गया, हवा तक नहीं खाया। प्रहलाद महाराज ने छह महीने की बात तो क्या, एक दिन भी बिना आहार के नहीं रहे। वो तीन बार भगवान का महाप्रसाद पूरा पाते थे, मालपुआ राबड़ी मलाई सब खाते थे, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अपने आप उनका ध्यान भगवान में लग जाता। उनको निराहार रहने की जरूरत क्या है, यदि निराहार से रहने से हो जाए तो सब पशु हैं, उनको कहीं बंद कर दिया जाए और कुछ भी बाहर ना दिया जाए तो सब लोग भगवान को पा जाएंगे। निराहार से नहीं, प्रेम के अभाव में नहीं। वो ध्रुव जी सकाम भक्त हैं, राज्य चाहा था, आए थे कांच खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, और मिल गया चिंतामणि भगवान। उनसे यदि कहते जे प्रभु मैं धन चाहता था और राज्य चाहता था पिता का, अब मुझे नहीं चाहिए, अब तो आपकी शुद्धा भक्ति चाहिए, तो बात बन जाती। किंतु इन्होंने नहीं कहा। जब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और संघ छुला करके चले गए, अरे ये क्या हुआ, हाथ में चिंतामणि आई और निकल गई, कांच का टुकड़ा हमारे हाथ में रह गया, हमारा 60,000 वर्ष या 35-50 कितना 36,000 वर्ष ये बेकार का गया। तब अनुताप करने लगे, किंतु का वर्षा यदि कृषि सुखानी, यदि कृषि खत्म ही हो गई सूख गई तो वर्षा होकर के क्या होगा, वो तो चले गए, इनको भोगना पड़ा। प्रहलाद महाराज जी को भगवान ने पूछा तुमको क्या दूं, उन्होंने कहा अरे मैं बनिया हूं, मैं तो बनिया नहीं, हमारे अंदर में यदि कुछ मांगने की इच्छा हो तो वो संपूर्ण रूप से दूर हो जाए। ठीक है तो भी तुम कुछ मांगो, तो आप एक बात दीजिए, देने पर ही आतुल हैं तो ये दीजिए कि हमारे पिताजी ने आपका विरोध किया और हमारा विरोध किया, उसका बहुत अपराध हो गया, किंतु है तो मेरा पिता ही, इसलिए उसके दोषों को सब क्षमा करके उसको भक्ति दी। अरे ये तो बहुत पहले हो गया है, ये नहीं, तुम और कुछ मांगो। ये मानेंगे नहीं प्रभु, कुछ देंगे ही। उन्होंने कहा प्रभु हमारी जितनी आपके चरणों में भक्ति है उसका जो फल है ये विश्व के प्रत्येक लोगों में बांट दिया जाए, उनको भक्ति हो जाए, और मैं उनका दुख लेकर के जन्म जन्मांतर तक ये संसार में दुख हो। बस प्रभु जी मुस्कुरा दिए, बोले जब तुम मैं हार गया तू जीत गया। मतलब कहां ध्रुव कहां ये, इन ध्रुव को प्रहलाद महाराज जी को भगवान की कौन सी सेवा प्राप्त हुई, पंखा झलते थे न, चामर जुलाते थे न, प्रसाद अर्पण करते थे न, क्या करते थे न, उनके साथ में खेलते थे, भगवान के साथ में इनका रिलेशन संबंध क्या था, कुछ था प्रभु और दास का, बस कितने दिन के लिए, बस एक दिन के लिए सामने आए, संबंध तो था किंतु तो एक ही दिन उनके साथ में बातचीत, कितनी घंटे बात हुई होगी, बिजली जैसे क्षण में चमकती है और चली जाती है वैसे ही हुआ। इसके बाद प्रभु चले गए, इनके ऊपर में भार दे गए, राज्य संभाल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, किंतु सेवा का अवसर नहीं मिला। हनुमान जी क्या करते हैं, दिन रात उनकी सेवा करते रहते। सीता जी स्नान कर रही हैं, मैया को ढूंढते हुए स्नानागार में पहुंच गए, मैया बड़ी विलंब कर रही है, सहा नहीं जा रहा, देखा जैसे सिंदूर लगा रही, मैया क्या कर रही है, ये लाल लाल क्या लगा रही है, अरे बेटा इसको सुहाग कहते हैं, सुहाग माने क्या, तो पति जीवित रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे, इसलिए हम लोग इसको चिन्ह के रूप में धारण करते हैं। तो कुछ नहीं बोले, मैया स्नानागार से निकल करके राम के पास में चली गई, राजभवन में, राजसभा में, हनुमान जी ने देखा जी मैया के यहाँ लगाने से ही रामचंद्र जी की आयु बढ़ती है, बड़े सुखी होते हैं, तो क्यों नहीं सब शरीर में पोत लिया जाए, बस जितना सिंदूर था डिबिया टिबिया खूब अच्छी तरह से पूछ पांच कर सब पूरा लगा दिया। और लगा करके बड़े भोले भाले बनते हुए रामचंद्र जी के पास में सभा भवन में पहुंचे। राम ने कहा, अरे ये क्या बना रखा? सब लोग हंसने लगे। रामचंद्र जी ने पूछा, जी ये क्या किया? यदि आपके मैया के यहाँ लगाने से आपकी आयु बढ़ती है, सुखी रहते हैं, तो मैं सभी सारा मन पोत लिया और क्या। सब लोगों ने मिलकर के उनकी सेवा बांट ली। किसी ने कहा, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सब लोगों ने मिलकर के इनकी सेवा के लिए सीता जी कोई सेवा नहीं रखी। अब ये बचे तो कैसे बचे? सवेरे से शाम और रात तक सारी सेवा बांट गई, इनके जीमा कुछ नहीं। कहा, हनुमान तुम बाहर में बैठे रहो। कहा, मैं बैठे कैसे रहूं, इनसे तो हो नहीं पाएगा। तो रामचंद्र जी से बहुत दूर से बोले, प्रभु हमको तो इन लोगों ने सेवा से निकाल दिया, तो हमको कोई एक सेवा मिले, आज तो इन्हीं लोगों से सेवा मांगी। तो उन लोगों से हाथ जोड़ करके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए, आप लोग मुझको एक सेवा दे, मैं चुटकी बजाता रहूं। तो चुटकी क्यों? आ तो जब जम्भाई आती है तो चुटकी बजाना चाहिए, चुटकी बजाने से फिर ठीक हो जाए। तो इनको न जाने कब रात में या दिन में चुटकी जम्भाई आ जाए, यही सेवा हमको दे दीजिए। अच्छा तो जाओ, इन रामचंद्र जी को कभी जम्भाई नहीं आती, तो ठीक है। बस वो दरवाजे पर रख करके चुटकी बजाने लगे, राम राम करने लगे, और राम को जम्भाई आने लगी। ऐसी जम्भाई में सब सेवाएं बंद हो गई और केवल चुटकी हो रही है। और केवल देखा उन्होंने, यार ये तो हमारी सब सेवा ही बंद हो गई। फिर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास में, राम ने जाओ जाओ हनुमान जी के पास में जाओ। फिर हनुमान जी के पास में गए, कहा, अच्छा अच्छा भाई तुमको हम सेवा देंगे, तुम ये सेवा करो, ये करो, और हम भी ये कुछ करें। ऐसे हनुमान जी सेवा, तो ये प्रहलाद बड़े हुए ना हनुमान जी, और ऐसे हनुमान जी झुक जाते हैं कहां पर? अर्जुन के रथ पर बैठ करके उनकी रखवाली करते हैं, कहते हाथ जोड़ के ऐसे। और वैसे अर्जुन क्या करते हैं? उद्धव जी के चरणों में सब समय नत रहते हैं, और उद्धव जी क्या करते हैं? गोपियों की चरण की धूली के लिए प्रार्थना करते हैं। बतलाओ कहां गोपियां, कहां? ये सब भक्ति का तारतम्य भागवत में वर्णन किया गया है। इन उपाख्यानों के द्वारा इसको समझना चाहिए। आज मृग महाराज की नहीं, बेन महाराज की कथा है, उसमें कुछ उपदेश है, मैं संक्षेप में बता देता हूं। अब इसके बाद में कथा आरंभ हो। अंग राजा थे, उनके ये ध्रुव वंश, और उनके पुत्र थे, उनको पुत्र नहीं हो रहा। ऋषि महर्षि बुलाए गए, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ की, पुरोदास बना। अग्नि जी प्रसन्न होकर के हवन से ही निकले और हाथों में पुरोदास, पुरोदास मैंने प्रसाद लेकर के, कहा, देखो ये दिव्य पुरोदास है, तुम अपने खाओ और अपनी पत्नी को दे दो, फिर दोनों से एक संतान की उत्पत्ति हो। ले लिया, अपना उन्होंने लिया और अपनी पत्नी को भी दिया। किंतु उनकी जो पत्नी थी वो असुरों के वंश की थी, कुछ वैसे ही स्वभाव की, इसलिए ये मन मृत्यु के वंश में थी। मृत्यु के वंश में, मृत्यु माने क्या? मृत्यु होती है पाप से, कर्मों के फल से होती है। इसलिए उसका यह जो पुत्र हुआ वो महाभयानक दस्यु जैसा हुआ। समस्त जितने दुर्गुण और अधर्म उसमें थे, बचपन से ही उसमें ये सब फूट फूट करके होने लगे। अपने बराबरी के लड़कों को मेमनों की भांति गला पकड़ करके उनको गिरा देता, उन्हें जान से मार देता। जंगल में जाकर के बिना आवश्यकता के सब पशुओं का शिकार करके उन्हें बकरे या भेड़ की तरह में काट देता। बड़ा अत्याचार करने लगा। जब वो 12-13 वर्ष का हुआ तो उसके अत्याचार को मैया बाप सह न सके, पिताजी जंगल में चले गए उसको छोड़कर। अब ये क्या करे, कहीं पता नहीं लगा, लोगों ने बहुत खोजा। अंत में चोर डकैत बढ़ने लगे, राज्य में अब शासन नहीं रहा, जो शासन नहीं रहा था तो आज की जैसी दशा है ना, ठीक आज से भी बड़ी भयंकर दशा होने लग गई। भृगु और सब अंगिरा इत्यादि ऋषि लोग आए उसकी माता के कहने से और सब लोगों के कहने से, कुछ चेष्टा की ये सुधर जाए, किंतु सुधरा नहीं और बढ़ गया। इसको अंत में राजा बना दिया, जाओ अच्छी तरह से सुशासन करना। ये अच्छी तरह सुशासन करने के बदले में कि जब भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, वेद शास्त्र उपनिषद इत्यादि शास्त्र जितने हैं वो पाखंडियों के रचे हुए अपने पेट पोषण करने के लिए सब उपाय हैं, इसमें कुछ नहीं है। जैसे आज की हवा चल रही है, वर्णाश्रम धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, देवता देवी जितने हैं हमारे रोम रोम में ही हैं, पृथक रूप से कुछ नहीं है, जो कुछ है वो मैं ही राजा ही सब कुछ है। यदि भगवान भी हैं तो वो राजा के ही है, अंदर में है, राजा के अंश है, राजा नहीं। भगवान की सृष्टि राजा ही कर सकता है, जैसे आज की बातें हो रही हैं नास्तिक जगत में ऐसे ही सब कर रहे हैं। बहुत उत्पन्न उत्पात इत्यादि करने लगा। अंत में ऋषि ने देखा जिसको हमने सुशासन के लिए बनाया राजा और ये उल्टा काम कर रहा है, चलो इसको समझाएं। आकर के समझाने की चेष्टा की। उन्होंने कहा, अरे मूर्खो, हमको समझाने आया हो? किसको समझाने वाले है देखो तो? अरे मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही देवता हूं, तुम लोग जो कुछ करो मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मैं तुम्हारा पेट भरने वाला, पोषण करने वाला, मैं तुम्हारा पिता, और हमको तुम लोग उपदेश देने आए हो, यहां से भग जाओ। तो वो तो ऋषि साधारण नहीं थे, उन लोगों ने सबको उसको घेर लिया, कहा जब मारने की जरूरत नहीं, अपने हुंकारों से ये मरेगा, बस हुंकार करने लगे, हूं हूं हूं, बस एक साथ में हुंकार किया सब लोग, आंख लाल लाल करके, बस इसी से वो मर गया। जब मर गया तो और भी बड़ी गड़बड़ी, और कुशासन फैलने लग गया बिना राजा के राज्य। फिर वही ऋषि लोग आए कुछ दिनों के बाद में, उसके शरीर को उसकी मैया ने, सुनीता ने, अच्छी तरह से मंत्र के द्वारा, तेल के द्वारा, कि घी के द्वारा उसको रख करके छत रखा। उन लोगों ने आकर के उसके जांघ को मंथन किया, मंथन करने से काला कुरूस उलाठा एक बौना सा बड़ा भयंकर आदमी निकला। निशीदा निशीदा निशीद से उनका नाम हो गया निषाद, वही लोग कोल भेल निषाद के रूप में माने जाते हैं। वो उससे निकलने, उसके अंश से निकलने के कारण जैसे समुद्र को मंथन किया तो पहले निकला विष न फिर अमृत निकला, उसी तरह से उसके शरीर के मंथन करने से उसके अंदर में जितने भी अधर्म था वो अधर्म निकल करके उन के रूप में हुआ, इसलिए वो लोग निषाद कहलाए। वो धर्म इत्यादि भगवान को मानना टानना ये सब कुछ नहीं आया। अब कुछ शरीर निर्मल हो गया, फिर उसको मंत्र पूत करके फिर उसके हाथों का मंथन किया, और हाथों के मंथन करने से महाराज पृथु और उनकी पत्नी उसे, इस तरह से ये परम धार्मिक पृथु हुए। अब ये देखते हैं, एक विचार करो, कंस ने भगवान के प्रति क्या नहीं किया, वो दो भाई, हाँ शिशुपाल और दंतबक, कृष्ण को कितनी गालियां दी, इसने भगवान को कहा कि इसने भगवान नहीं है, और उन लोगों ने भगवान को गाली दी, तो उन लोगों को तो हो गया मोक्ष, उन पर तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, जावा आवागमन से रहित हो गए, और ये भगवान को नहीं माना तो इसको ऐसे दुर्गति क्यों हुई, वो मारा गया, अंत में नरक में गया, फिर ऋषियों की कृपा से उसकी कुछ सदगति पीछे हुई। किंतु इसको माने ऐसी दुर्गति हुई जिसका कहना नहीं, क्यों दुर्गति हुई, इसकी मोक्ष क्यों नहीं हुआ, इस पर विचार करना है थोड़ा सा। ये वेन जो था, वेन भगवान के प्रति इसका कोई संबंध नहीं था, ये भगवान मानता ही नहीं था, और साधु संतों के प्रति अनादर किया इसने बेन ने, शास्त्र की कोई बात नहीं मानी, भगवान में इसका आवेश नहीं था, इसलिए इसकी दुर्गति हुई। और दूसरी तरफ में कंस को ही ले लीजिए, कंस ब्रज के किसी भी दूसरे के प्रति अन्याय किया, कृष्ण को छोड़ करके किसी और को मारने का प्रयास किया, ऐसा तो सुनते नहीं है। उसने नारद जी का भी आदर नहीं किया, अंगिरा का भी आदर नहीं किया बेन ने, किंतु इसके घर में नारद जी आते थे और उनकी पूजा करता था, उनकी बात सुनता था, उनके बातों में विश्वास करता था। कौन? कंस। किसी भी, देखो उनके राज्य में यज्ञ इत्यादि सब बंद कर दिया था, किसने? बेन ने। कोई भी हमारे जग हमारे राज्य में धर्म की कोई बात नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा। और इसके राज्य में ब्राह्मण लोग वहां पर यज्ञ करते थे कि नहीं? भातरौल में मना किया यज्ञ के लिए, कंस ने मना नहीं किया। दूसरी बात, इसको जन्म से ही अभिशाप था कि इसके आठवें गर्भ से जो निकलेगा उस वही तुमको मारेगा, तो जो मारेगा तो उसको मारने के लिए चेष्टा कर रहा था, इसमें बुराई क्या है, ये अधिक नहीं है ना? इसलिए उसका इतना दोष नहीं था जितना इसका अपराध है। हमको कृष्ण ही मारने के लिए आए तो हम उनसे लड़ेंगे नहीं, तो इसलिए ये भगवान उसमें बिरस साधन इत्यादि कर लेंगे, इसलिए वो अपराध नहीं लेते। इसलिए ये सब समय चिंतन करता था, ये कृष्ण मारेगा, कहां है, कैसे है, एकदम आविष्ट हो गया, और आविष्ट होकर के इसके अतिरिक्त जगत कहां है, मैं कहां हूं, मेरा शरीर कहां है, ये कुछ नहीं जानता। कोई अत्याचार भी विशेष नहीं किया, यदि अत्याचार भी कुछ किया तो दूसरों के द्वारा हरे पेटों को कड़वा दिया या कुछ ऐसे आदेश दिया। पूतना भी गई तो ब्रजवासी की किसी लड़के को दूध पिला करके मारा, विष पिला करके? नहीं, वो जा ही नहीं सकी वहां, वो असुरों के बच्चों को ही केवल दूध पिला करके बीच और उनको मारा। इसलिए कंस नित्य निरंतर भगवान की चिंता करने से, और भगवान का अस्तित्व मानता था, वेदों का अस्तित्व मानता था, नास्तिक नहीं था, इसलिए उसकी सुगति हो गई। शिशुपाल, शिशुपाल कैसे मरा भगवान के बारे में, उसको पहले ही पता था, उसका चार हाथ था, दो हाथ गिर गया कृष्ण के दर्शन से। कृष्ण उनके मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई ना, मौसेरे भाई थे, उसको चार हाथ हुआ, जिसको देखने से हाथ गिर जाएगा वो इसका महत्ता होगा, मारने वाला होगा। जब कृष्ण अपनी बुआ जी के पास में गए और लड़के को बड़े प्यार से देखा और गोदी में लेने जा रहे थे, जब ही स्पर्श किया दो हाथ गिर गया, मैया चमक गई, अरे ये तो इसी के हाथ से मरेगा। मैया कहा, ये बेटा तू हमारा बेटा ही है, तू हमारे बेटे को मारेगा, तब मैं तुम्हारे बेटे को क्यों मारने लगा, अतः यदि अपराध करे, अरे 100 अपराध करेगा तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसके बाद में करेगा तो देखेंगे। अच्छा बेटा ऐसा ही करना, 100 अपराध तो तुमसे करेगा ही नहीं। ठीक, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको मालूम हुआ जैसे इससे मैं मरूंगा अपने मौसेरे भाई से, बस दिन रात उसी की चिंता करनी। धर्म को वो भी मानता था, शिशुपाल मानता था कि मैं नहीं मानता था, अपनी बेटी का विवाह किसे किया? नहीं, शिशुपाल का मित्रता जरासंध इत्यादि राजाओं से थे, जरासंध धार्मिक राजा था, ब्राह्मणों की पूजा करता था, वेद मानता था, वर्णाश्रम धर्म मानता था, ईश्वर की पूजा भी करता है, शंकर की पूजा करता है, बेन शंकर टंकर कुछ नहीं मानता है, किंतु ये सब मानता है, इसलिए ये कुछ धार्मिक भी है। इसका दोष क्या है? शिशुपाल का, पांडवों का थोड़ा सा भी पक्ष होगा, वो भी कृष्ण के लिए। यदि कृष्ण पांडवों का पक्ष नहीं लेते तो पांडवों का भी अनिष्ट नहीं करके उनसे मित्रता पूर्वक रहता, किंतु कृष्ण से उसको भय है, इसलिए कृष्ण के प्रति दिन रात चिंतन करते उनके प्रति ऐसी व्यवहार किया, इसलिए इन लोगों की मुक्ति हो गई, किंतु बेन राजा का ऐसे सर्वनाश हुआ। इसलिए गाली गलौज भी दो प्रकार की होती है, एक होती है देश बुद्धि से और एक होती है प्रतिगर्भ। प्रतिगर्भ माने प्रति से। गोपियों को कृष्ण को चोर, लंपट, मिथ्यावादी, ये सब जो कहती हैं, कृष्ण वेदों से भी अधिक इन बातों